السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں داخل کر دیا ان راتوں میں جو پورے سال کی بہترین راتیں ہیں، جن میں ایک رات ہزار مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر رات ہے، جن راتوں کو پانے والے بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اور نصیب والوں کے ہی حصے میں یہ راتیں آتی ہیں. یہ وہ راتیں ہیں جن کے لیے اگر قبروں میں جانے والوں سے پوچھا جائے کہ آپ کس چیز کی خواہش کریں گے، تو رمضان کے ایک دن یا ایک رات کی خواہش کریں گے. یہ وہ راتیں ہیں جو نصیب کو بدل دینے والی ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جو بخشش کی سبب بن جانے والی ہیں، یہ وہ راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی راتیں ہیں. ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ راتیں ہمیں عطا فرمائیں جن کے لیے صحابہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا لیلت القدر، کہ اللہ تعالیٰ لیلت القدر تک پہنچا دینا. ہر رات کو ہی لیلت القدر سمجھیں، کیا مشکل ہے اس میں کہ ہر رات ہمارے لیے لیلت القدر کی طرح ہی ہو، کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہی رات ہے لیلت القدر، اور اس کا ایک ایک لمحہ ہم ایسے گزاریں کہ ہم جیسے کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے اور آپ اس کو چمٹ جانا چاہتے ہیں، میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس طرح اس رات کے ہر لمحے سے چمٹ جائیے، اس طرح اس کو پکڑ کے رکھیے، اس طرح اس کی قدر کیجیے، اس طرح ہر گزرتے لمحے کو گزاریں کہ اس میں ہم نے وہ پانا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کر دے، جو ہماری بخشش کروا دے، جو ہمیں ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کرنے والے سے زیادہ بڑھ کے اجر دلا دے. یہ بہت قیمتی راتیں ہیں، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اس کا مطلب وہ زندہ ہیں، تو الحمدللہ کہیں. سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی راتیں دے دی، ہمارے نصیب میں کر دی. رات کا مل جانا ایک خوش نصیبی ہے، اور اس رات سے فائدہ اٹھا لینا اس سے بڑھ کے خوش نصیبی ہے. الحمدللہ رات تو ہمیں مل گئی، یہ پہلی خوش نصیبی ہم نے حاصل کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اتنی زندگی دے دی، اتنی ہمیں سانسیں دے دیں کہ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم نے اس پہ ادا کیا. اب اس سے بھی اوپر یہ ذمہ داری ہم پر بنتی ہے کہ ہم ان راتوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ یہ 10 راتیں آپ نے جاب کرنی ہے، آپ کو نائٹ شفٹ کرنی ہے، تب آپ کو $1,000,000 ملے گا، हम सब दौड़ेंगे, 10 रातें तो कुछ भी नहीं, 1,000 रातों को भी करना पड़े, $1,000,000 मिल जाएगा। ये तो $1,000,000 से कहीं ज्यादा कीमती हैं। 83 ईयर से बढ़ के आप दिन रात अगर इबादत करते, दिन रात और सांस ना लेते, 83 ईयर एंड 4 मंथ्स, तो जितना आप अजर कमाते उससे बढ़ के अजर इस एक रात का इबादत का है। हर साल की तरह मैं इस दफा भी आपको ये बात रिमाइंड कराना चाहती हूं कि यहां कंपटीशन जागने का नहीं हो रहा, कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है। हम जाग रहे हैं लिहाजा हम बड़े खुश हो जाएं, बात जागने की नहीं है, बात यह है कि इन रातों को कौन जिंदा कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों को जिंदा करते थे। क्या मतलब? हदीस में जिंदा करने का लफ्ज आया, मतलब ये है कि इन रातों में इबादत करते थे। अगर आपने इबादत ना की और रात को शोगल मेला करते रहे, टेक्सटिंग में लगे रहे, इधर बात उधर बात, क्योंकि मैं जागी तो हुई हूं, तो लिहाजा अब मैं गपशप कर लूं, कोई टीवी चैनल लगा लिया, चलो चाहे मजहबी लगा लिया, चलो थोड़ी देर के लिए उससे एंटरटेन हो जाऊं, इधर बैठ उधर बैठ, तो इससे इबादत नहीं कहते हैं। ये सिर्फ रत जगा है, और हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हम मेहनत भी करें, जागने की तकलीफ भी उठाएं और फिर हासिल कुछ भी ना हो सिवाय रत जगे के। तो लाजिम क्या है कि इनमें अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बनाया जाए, और बेहतरीन काम जो इन रातों में करने का है, हर रात में हम नहीं जानते कौन सी लैलतुल कदर है, लिहाजा हर रात को ही समझें कि यही है बस। छोड़ दें इसको कि किसने चांद कब देखा, ये किसकी इवन नाइट है किसकी ऑड नाइट है, इस बहस में ना पड़िए। अगर आपको 83 साल की इबादत से ज्यादा अजर पाना है तो आपको किसी रात को मिस करने का रिस्क नहीं लेना। आप अगर हर रात जागकर इबादत कर गए तो लाजमी आपने लैलतुल कदर पा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप कोई भी हो, इससे हमें क्या वास्ता। तो सबसे ज्यादा जिस काम की तरगीब हदीस में दी गई है वो क्या है? मन काम लैलतुल कद्र ईमान व एहतसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, जिसने कियाम किया लैलतुल कद्र में, ईमान हो और सवाब की नीयत हो, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देगा। तो सबसे बढ़ के जरूरी है कियाम करना। कयाम में आप कुरान जितना पढ़ सकते हैं कयाम को लंबा कीजिए, जितनी देर भी आप खड़े रह के कुरान करीम की तिलावत कर सकते हो, हल्की सी आवाज में करें, लेकिन आपके कान सुन रहे हो इतनी आवाज हो, सिक्लूड कर लें खुद को, कि जितना इंसान लोगों के साथ रहता है उतना ही फिर कोई ना कोई बात होगी जाहिर है, तो अकेले कर लें खुद को, कोई मुश्किल नहीं है, आप हो और आपका रब हो। चूंकि ये रात मगरिब से ही शुरू हो जाती है और फजर तक बाकी रहती है, लिहाजा उस वक्त से केयरफुल हो जाएं अपनी जुबान से, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात मुंह से ऐसी निकल जाए जिसमें कि कोई हमारे लिए गुनाह हो, जिसमें के कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी की बात हो जाए। लिहाजा चौकस रहें, जुबान को अल्लाह के जिक्र में लगा दें, चाहे आप इफ्तार के बाद बर्तन उठा रहे हैं, किचन में साफ कर रहे हैं, आप कुछ भी, और जाहिर है घर के समेटने का काम करना होता है, अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। आप चाय बना रहे हैं, आप उठ के जरा खड़े होकर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो भी कॉन्स्टेंटली जिक्र करते रहे। जिस वक्त आप कयाम में नहीं है तब भी जिक्र हो। जाहिर है हम इंसान हैं, पूरी रात हम कयाम तो नहीं कर सकते, वो 100 नफल नहीं पढ़ सकते, या पूरी रात हम खड़े नहीं रह सकते। बैठेंगे भी, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच भी करेंगे, उस वक्त भी जुबान कॉन्स्टेंटली चल रही हो। और जितना कयाम करेंगे उसके अंदर भी सजदा लंबा करेंगे, सजदे में दुआएं मांगेंगे। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि जिसने इशा जमात के साथ पढ़ ली उसको आधी रात की इबादत का सवाब मिल जाता है, और जिसने फजर भी जमात के साथ पढ़ ली तो उसको भी आधी रात का इबादत का सवाब मिलता है, तो जिसने इशा और फजर पढ़ ली दोनों उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है। और दूसरी एक और फजीलत, देखिए छोटी छोटी बातों के ऊपर ना इतनी इतनी बड़े वादे हैं इस महीने में, तो यानी अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात है कि जिसने कयाम कर लिया इमाम के पीछे, जब तक इमाम फारिग नहीं हो जाता उसके लिए सारी रात की इबादत का सवाब लिख लिया जाता है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमारे यहाँ तो 2 इमाम 3 इमाम इस तरह से तरावी पढ़ाते हैं, तो अब हम क्या करें? तो कम से कम एक इमाम के साथ तो आप कर लेना, कयाम कर लिया आपने एक इमाम के साथ, तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि जब वो इमाम फारिग हुए तो आपको इंशाअल्लाह पूरी रात की इबादत का सवाब मिल जाएगा। तो हम कयाम करें, फिर हम जब घर पे आए तब भी हम कयाम में गुजारें रात को ज्यादातर। आपको पता है अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेक लोगों की जो सिफत, मोहसिनीन की जो सिफत, कानू कलीलम मिनल्लैली मा यहजाउन व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, वो रातों को ना बहुत कम आराम करते थे, उनके पहलू कम ही बिस्तरों पे लगते थे, और सहरी के वक्त वो इस्तिग़फ़ार करते थे। अब हम बाकी दिनों में अगर नहीं भी करते, कम से कम रमज़ान में हमारा ये मामूल होना चाहिए। और अब तो रमज़ान भी अपने अख्तिताम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कम से कम अब तो हम ये ज़रूर करें कि हम इंशाअल्लाह ताला हर रात में कयाम करें, हर रात को थाम के रखें। ये कीमती है, जैसे खजाना होता है, ये खजाना मेरे हाथ आ गया है, इस खजाने को जाया नहीं होने देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैसे भी आम दिनों के लिए कि रात का कयाम जरूर किया करो, तुम में से पहले जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं उनके नेक लोगों का यही तरीका रहा है कि वो रात को कयाम करते थे आम दिनों में भी। और ये रब के कुर्ब का जरिया और गुनाहों की बख्शिश होती है, इससे रातों के कयाम की बरकत से अल्लाह ताला दिन में भी गुनाहों से इंसान को महफूज फरमा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को उठे और फरमाया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, आज आसमान से खजाने उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, फिर बेशुमार फितने भी दिखाई दे रहे हैं। अपनी माओ को जगाओ, उम्महातुल मोमिनीन की तरफ इशारा था कि, और अपने घरों में सोने वाली औरतों को जगाओ कि वो रात में इबादत करें, यानी फितनों का जिक्र करके फिर सारे ये इशारा दे दिया कि रात के कयाम के जरिए आप फितनों से बच सकते हैं, जितने फितने, और उस वक्त तो क्या फितने होंगे जो आज फितने हैं। सैयदना सहल फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया ए मोहम्मद, जितना जीना चाहते हो जी लो, मगर आखिर एक दिन मौत को आना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से उम्मत को असल में ये बताया जाता है कि जितना जीना है जी लो, मगर ये बात जहन में जरूर रखना कि एक दिन लौटना है, एक दिन वापसी है। जब इंसान इस ख्याल के साथ जिंदगी गुजारता है तो उसके जीने का ढंग बदल जाता है, फिर वो वैसे नहीं जीता जैसे वो लोग जीते हैं जिनको ये होता है कि जब मौत आएगी देखा जाएगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद से अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे, अल्लाह ताला ने उनको कुछ बताया, उसके हुक्म से ही वो उतरते थे और अल्लाह ताला का पैगाम ही लेकर आते थे। तो जितना जीना है जी लो, मगर आखिर को तो एक दिन लौटना है, एक दिन मर जाना है। मूसा अलैहि सलाम से जब कहा गया था कि आप बैल की पुश्त पे हाथ रखें, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी आपकी जिंदगी के साल बढ़ जाएंगे, तो मूसा अलैहि सलाम ने पूछा उसके बाद, फरमाया उसके बाद तो फिर मौत ही है। फरमाया फिर जब तभी भी मरना है तो अभी क्यों नहीं। तो मौत ने तो एक दिन आना है। फिर अगली बात जिब्राइल अलैहि सलाम ने क्या फरमाई, जिससे चाहे मोहब्बत कर लो, एक दिन उससे जुदाई होनी है। यानी जिससे भी मोहब्बत करोगे ना, एक दिन या तो वो आपको छोड़ जाएगा या आप उसको छोड़ जाएंगे, जुदाई होके रहेगी। फिर इंसान फिर किसी चीज से भी ऐसी मोहब्बत नहीं रखता कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाए। तीसरी बात फरमाई, और जो जी चाहे अमल कर लो, यानी अच्छा करो या बुरा, मगर ये याद रखना कि उसकी जजा जरूर मिलेगी। अब जब इंसान ये सोच के कोई अमल करेगा कि इसका अच्छा या बुरा बदला मुझे मिल के रहेगा, तो अमल करने में कैसे फूंक फूंक के कदम रखेगा। फिर जिब्राइल अलैहि सलाम ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अपनी उम्मत को बता दें, शर्फे मोमिन कयामुल लैल में है। यानी अल्लाह के यहाँ अगर शर्फ चाहते हो ना, मर्तबा चाहते हो, तो रात को कयाम करो। अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत उसको मिलेगी जो रात को अपना बिस्तर छोड़ के अल्लाह ताला के आगे खड़ा हो जाएगा, कभी रकू करेगा, कभी सजदे में अपने जाए नमाज को अपने आंसुओं से भिगो देगा। और लोगों में इज्जत चाहते हो तो लोगों के पास जो कुछ है उससे बेनियाज हो जाओ, यानी लोगों से ना मांगो कुछ भी, उस चीज की तरफ ना देखो जो लोगों के हाथ में है, अल्लाह ताला से मांगो। तो इस महीने की इन रातों में जो बेस्ट रातें हैं, उनको बेस्ट चीज के साथ डेकोरेट करें, और वो बेस्ट चीज है कयामुल लैल। तहज्जुद तो वैसे भी बड़ी फजीलत वाली नमाज है, फर्ज नमाजों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत तहज्जुद की है, और इन रातों में कयामुल लैल तहज्जुद को ही कहते हैं। इन रातों में खास तौर पे इसका एहतमाम कीजिए, लंबे लंबे कयाम करें, लंबे लंबे सज्दे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात की खैर से जो महरूम रह गया वो असल महरूम है, वो वाकई महरूम है। दूसरी हदीस में आता है कि वो दुनिया की हर चीज से महरूम हो गया, हर तरह की खैर से महरूम हो गया। तो लिहाजा इन रातों को जाया नहीं करना, इनकी खैर को समेटना है, खुद को महरूम ना करें इनसे। बहुत सोशलाइजिंग करते हैं हम सारा साल, बहुत पार्टीइंग करते हैं, इन रातों में सहरी पार्टी से इज्तनाब करें, इफ्तार पार्टीज में ना जाएं, क्योंकि बात वही है, जितना वहां बैठेंगे उतनी कोई ना कोई बात ऐसी हो जाएगी। और सहरी की पार्टीज जो आम हो चुकी हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा वक्त का जिया है। वो रातें जो इतनी कीमती हैं, वो इंसान शोर शराबे हंगामे खाने पीने इसके अंदर गुजार देता है। वो फेस्टिविटी की रात बन जाती है। ये फेस्टिविटी की रात नहीं है, ये तो इबादत की रातें हैं। और नाम क्या हो रहा है, हम जाग गए, हम जाग लिए सारी रात क्योंकि हम सहरी की पार्टी में थे। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला भी इससे महफूज रखे हमें। मगर जब इंसान किसी चीज को कीमती समझ ले ना और उसकी अहमियत जान ले, तो कभी इसको लूज नहीं करना चाहेगा। हम भी कभी इसको लूज करने का तसव्वुर भी ना करें कि हमारे एक लम्हा भी इसका जाया हो। और इन रातों में दुआएं बहुत ज्यादा मांगे। देखिए, दुआ सिर्फ ये नहीं होती कि जब इंसान को जरूरत हो वो तब मांगे, ये जी मेरी जरूरत है, ये मेरी लिस्ट है, अच्छा इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो लिहाजा जब मुझे जरूरत हो तो मैं दुआ करूं वरना नहीं करूं। आपको पता है कुरान करीम में ये मुनाफिकों की या काफिरों की ये सिफत बताई गई है कि वो लोग जब उनको कोई मुसीबत पड़ती थी ना, तब बड़ी ये गड़गड़ा के दुआएं करते थे। जब मुसीबत टल जाती थी तो वो इस चीज की जरूरत ही नहीं महसूस करते थे कि कभी अल्लाह ताला को याद करें। दुआ अल्लाह की याद का जरिया है, दुआ मुख्य इबादा है, इबादत की जिस्ट है, इबादत का निचोड़ है, दुआ ही इबादत है। यानी आप सोचते हैं कि दुआ तो हमारी अपनी यानी हाजतें हैं, जरूरतें हैं, वो इबादत नहीं है, इबादत सिर्फ कुरान पढ़ना है, ये जिक्र करना है, नहीं, दुआ भी इबादत है। लिहाजा जितना टाइम आप दुआ में लगाएंगे, चाहे वो नमाज में आप दुआ कर रहे हैं, चाहे नमाज से बाहर दुआ कर रहे हैं, वो भी इबादत में ही है। आप अल्लाह ताला से मांगिए। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह ताला से मांगो, इसलिए कि अगर अल्लाह ताला नहीं उसको जोड़ेगा तो वो कभी जोड़ नहीं सकता। तो लिहाजा दुआ को ऐसे ना समझे कि हमने कोई बड़ी चीज होगी तो फिर ही मांगनी है, छोटी छोटी बातें हम क्यों मांगे। हमने अल्लाह ताला माफ करें, हमने अल्लाह ताला को पहचाना नहीं फिर, अगर हम ये समझते हैं, क्योंकि हम फिर इंसानों की तरह ही समझने लगे ना, कि जैसे इंसानों से हम दूसरी दफा कोई चीज मांग ले, तीसरी दफा मांग ले, चौथी दफा मांग ले, पांचवीं दफा तो जरूर ही कह देगा क्या मुसीबत है, हर वक्त तुम मांगते ही रहते हो। हमने इस तरह से अल्लाह ताला को समझ लिया कि जब बड़ा काम होगा ना तो वो तो मैं जाके कहूंगी, ये छोटे छोटे काम तो नहीं मुझे कहने चाहिए, ये तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। नहीं, जूते के तस्मे से ज्यादा मामूली क्या चीज हो सकती है। सहाबा वो भी अल्लाह ताला से मांगते थे, नमक भी अल्लाह ताला से मांगते थे, नमक खत्म हो जाता था ना वो भी पहले अल्लाह ताला से मांगते थे। तो अल्लाह ताला को इंसानों की तरह ना समझे, वरना तो आपने अगर उसको उससे सिर्फ जरूरत के वक्त मांगा ना, तो आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया उसको। उससे हर वक्त मांगे, मोमिन जो होता है वो हर वक्त अल्लाह ताला से मांगता है, क्योंकि दुआ कनेक्शन है आपका अल्लाह ताला के साथ, आप दुआ के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ। दुआ में तौहीद है, क्योंकि आप ये यकीन रखते हैं कि जिससे मैं मांग रही हूं वो जरूर मेरी हाजत पूरी करने की ताकत रखता है, उसके पास कुदरत है, उसके पास पावर है। जाहिर है आप उसी को कहते हैं ना, अपना कोई काम जिसको आप समझते हैं ये कर सकता, जिसको आप समझते हैं ये नहीं कर सकता, उसको तो कभी भी नहीं आप कहेंगे। आप किसी बच्चे को थोड़ी कहते हैं कि ये काम मसल मुझे जॉब दिला दो, क्योंकि आपको पता ही है ये तो बच्चा है, इसकी बस में क्या है। आप जरूर उसके पास जाते हैं जिसको आप कुछ समझते हैं। आप अपनी सारी हाजतें लेके अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाते हैं ना, इसका मतलब आपने उसको ऑल पावरफुल समझा, अला कुल्ली शहीन कदीर समझा ही है, तो जाते हैं ना। अल्लाह ताला को पसंद है आप उससे मांगे, उसको बड़ा महबूब है वो बंदा जो उससे दुआएं करता है। हम दुआओं को भी आज डेलीगेट कर चुके हैं, दुआओं को भी दूसरों के सिर ही थोप देते हैं, आप हमारे लिए दुआ कर लें। अपने लिए तो हम दुआ कर लें, दूसरे के कहने से पहले खुद अपने लिए कभी करते हैं? अपने लिए क्या उस तरह तड़पते हैं? जितने जौक और शौक से हम दूसरे के जिम्मे लगा देते हैं, यानी दुआओं का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हमने, सारी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट बांटते फिर रहे हैं, खुद करते नहीं। हमें तो दुआ करनी ही नहीं आती। क्यों नहीं आती दुआ? क्या है आपको नहीं आती? कुरानी दुआएं नहीं याद होती, कोई बात नहीं है। आपको मसनून दुआएं नहीं याद है, कोई बात नहीं है। शायद चंद एक याद हो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। दुआ तो वो चीज है जो आपके दिल से उठती है, वो पुकार जो दिल में से आए, वो ही दुआ है। वरना बाकी सब कुछ सिर्फ ऐसे ही है, जैसे आप टेबल्स पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी नहीं है। जिस चीज की आपको समझ ना आए कि ये क्या कहा जा रहा है, बस आप बस आमीन 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 कह रहे हैं, आपके दिल की पुकार ही नहीं। आप अपने लिए खुद मांगे ना, आपको खुद पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। क्या हमें अभी तक अपनी नीड्स भी नहीं पता? क्या हमें अभी तक अल्लाह ताला से बात भी नहीं करनी आई? क्या अभी तक हमने वो टाइम नहीं निकाला कि हम वन टू वन हो, मैं और मेरा रब, मैं बोलूं वो सुन रहा है, और इन रातों में जबकि उसकी रहमत घेरे हुए हर चीज को, बेस्ट नाइट्स, इससे ज्यादा बेहतरीन मौका क्या हो सकता है अपनी दुआओं की कबूल कराने का? सहाबा अपनी दुआएं रखा करते थे रमजान के लिए, रमजान में मांगेंगे, रमजान आ रहा है तो हमें अभी तक यही नहीं पता हो कि हमें मांगना क्या है। चले अगर नहीं पता, मसनून दुआओं का तर्जुमा पढ़ लें, आपको कुछ सेंस हो जाएगी कि क्या किस तरह से मांगा जाता है। लेकिन होनी चाहिए वो पुकार अपने दिल से, सिर्फ अल्फाज ना हो, या इनका तर्जुमा सीखें फिर मांगे तो सही है, कि आपको पता तो हो आप मांग क्या रहे हैं, वरना कनेक्शन नहीं बनेगा। आप पढ़ पढ़ के रखते जाएं किताबों को, क्या कनेक्शन है कि अगर आपको यही नहीं मालूम कि मैं मांग क्या रही हूं। और याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दुआ जो बंदा मांगता है उसके बदले अल्लाह ताला उसको जरूर कुछ ना कुछ अता करता है। साहबा ने फरमाया कि या रसूल्ला, फिर तो हम बहुत कुछ मांग लेंगे। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा दे सकता है। नहीं, वो अलवासिया है, उसके खजानों की वुसत तो हम समझ भी नहीं सकते। तो सबको सब कुछ अता भी करते तो उसके खजानों में थोड़ी कोई कमी आनी है। वो सबकी मांगे पूरी कर दे, कितना मांग सकते हो? जानते हैं आखिरी जन्नती जब जन्नत में जाएगा, अल्लाह ताला उसको फरमाएगा मांगो, वो मांगता जाएगा मांगता जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा और मांगो और मांगो और मांगो, वो इतना मांग लेगा आखिर उसको भी नहीं अब समझ आएगी और क्या मांगू। वो अब उसकी मांग भी खत्म हो गई। देखिए हम इतने छोटे लोग हैं ना, हमारी मांगे भी तो छोटी हैं। तो ये कहती है अल्लाह ताला, हम मांग भी कितना सकते हैं, जितने हम छोटे हैं उतनी हमारी चीजें भी छोटी हैं, हमारी सवाल भी छोटे, हमारी मांग भी छोटी, तेरे खजाने तो बहुत वसी हैं। तो वो इतना मांगेगा जितना उसके जेन में आ सकता है, यानी वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ, वो सारा मांग लेगा। तब वो कहेगा बस अब और क्या मांगू, वो सब मांग ली। अल्लाह ताला फरमाएगा जितना तूने मांगा वो भी सब तुझे अता होता है, और जितना पूरी दुनिया और इससे 10 गुना सब तुझे अता करता हूं। तो इंसान लिमिटेड है ना, उसकी सोच भी लिमिटेड है, लेकिन अल्लाह ताला के खजाने लिमिटेड नहीं है। आप जिससे मांग रहे हैं ना, सोचें वो रब्बुल आलमीन है, जहानों का चलाने वाला, जहानों का पैदा करने वाला, जहानों की परवरिश करने वाला, जहानों को सस्टेन करने वाला। एक जहान नहीं, ये तो आप अपनी जमीन का सिर्फ सोचते हैं तो लिमिटेड हो जाती है आपकी सोच। जरा अपनी सोच को ऊपर लेके जाएं, कितने आसमान, कितनी बड़ी कायनात, सब को चलाने वाला, वो आपकी छोटी सी मांग से क्या वो पूरी ना कर सकेगा? अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला के बारे में अपना गुमान बहुत बुलंद रखें, और जितनी आपकी सोच बढ़ के होगी, अल्लाह ताला भी आपकी सोच के मुताबिक ही आपको अता करेगा। किसी ने एक दफ़ा मुझे कहा, मैं पूरे दिन में एक ही दुआ मांगती हूँ, क्योंकि रोज़ेदार की एक दुआ तो कबूल होनी है, तो लिहाजा मैं सारा दिन सिर्फ एक ही दुआ मांगती हूँ। कितना अंडर एस्टिमेट किया अल्लाह ताला की कुदरत को, जबकि वो तो फरमाता है, हाँ हदीसे कुदसी है, कि अगर तुम्हारा अव्वल आखिर जिन इंस मर्द औरत मोमिन काफिर सब जमा हो जाए एक मैदान में और सब मांगने लगे और सबको अल्लाह ताला अता कर दे, जो जो उसने मांगा सबकी मांगे पूरी कर दे, तब भी उसके खजानों में इतनी कमी भी नहीं आनी जितनी सुई को समंदर में डबो के निकाला जाए तो जितना पानी उस पे लग जाता है, और जितनी कमी समंदर में आएगी। अल्लाह अकबर, कितनी कमी आएगी समंदर में अगर सुई डबो के निकालेंगे, सोचें कितनी कमी आएगी, कुछ भी नहीं। तो उस वो सबको भी अता कर देगा ना, तो तब इतनी सी बात है उसके लिए। तो लिहाजा इन रातों को दुआओं में गुजारें, और दुआ को दिल की गहराइयों से करें, अपना दिल पोर आउट कर दें अल्लाह ताला के आगे, अपना दिल हल्का करें अल्लाह ताला के आगे, कि वो ही तो है जो समझ सकता है हमारी ज़रूरियात को, हमारी एहतियाज को, कि जो हमारी मोहताजी है ना उसको वो ही समझ सकता है, वो ही जानता है हमारे दुखों को, हमारे मसलों को, जो हम किसी को भी नहीं कह सकते वो उसको कह सकते हैं, और वो सुन रहा है, ये यकीन रखें कि वो सुन रहा है मेरी एक एक बात, जो मैं अल्फाज में बोल भी नहीं सकती वो उसको भी जानता है। आपने दिल में बात करनी ना, आप दिल में कर लें, आपने जुबान से कुछ बोलना है आप जुबान से बोल लीजिए, लेकिन बात जरूर करें। और ये बातें शोर हंगामों में रह के नहीं हो सकती, इन बातों के लिए तन्हाई जरूरी है, इसीलिए इतकाफ की इबादत है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में, इन दिनों में, ये 10 जो दिन है इनका इतकाफ क्यों फरमाते थे? ताकि सिक्लूजन हो जाए। इतकाफ आज लोग करते हैं, एक तो इतकाफ को समझते हैं कि घरों में होता है, घरों में नहीं, मस्जिद में ही इतकाफ होता है, जैसे तवाफ सिर्फ काबा का ही होता है, कोई और जगह का नहीं हो सकता, जुमे की नमाज सिर्फ जामे मस्जिद में ही होती है, घर में तो जुमे की नमाज नहीं हो सकती, इस तरह ही इतकाफ भी मस्जिद में ही हो सकता है। लेकिन आज जो इतकाफ मस्जिद में भी करते हैं वो गपशप में ज्यादा अपना वक्त गुजार देते हैं, बस उस वक्त भी अगर आप टेक्सटिंग में लगे हुए और फोन पे खबरें देख रहे हैं तो ये क्या इतकाफ हुआ? इतकाफ तो कट जाना है, दुनिया से कट के आप अलग हो गए। इतकाफ का माना है जम जाना, कि आप जम के बैठ गए एक जगह पर और बस अल्लाह ताला से लौ लगाई। लेकिन अगर आप घर में भी ये प्रैक्टिस कभी नहीं कर पाए कि आप एक आध घंटे से ज्यादा कहीं जा नमाज पे बैठ जाएं, तो वो फिर इतकाफ आपसे नहीं हो सकता, पहले घर में इसकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर घर में ही आप बोर हो जाते हैं, अगर आपसे बैठा नहीं जाता, अगर आप फिर फोन पकड़ लेते हैं, फिर एक रात भी आपसे नहीं गुजर रही, ऐसे कभी ये चेक कर लूं, कभी वो देख लूं, कभी उससे बात कर लूं, तो फिर आप मस्जिद में 10 दिन कैसे इतकाफ बैठेंगे? लिहाजा इसके लिए पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर घर में भी आप एक कोने में बैठ जाते हैं अपने आप को सिक्लूड करके, उसको इतकाफ ना करें, लेकिन बहुत अच्छी बात है वो। और अगर मस्जिद में आपने इतकाफ करना, जरूरी नहीं कि आपने 10 दिन का ही करना, एक दिन का भी कर सकते हैं, एक रात का भी कर सकते हैं। तो ये इतकाफ बड़ी खूबसूरत इबादत है, मगर हर कोई नहीं कर सकता, जाहिर है हर एक के ऊपर ऐसी फरागत नहीं है हर एक के पास, या जिम्मेदारियां हैं, तो वो ये नहीं कि सब कुछ फेंक के, बच्चों को फेंक के, घर को छोड़ के और जाके इतकाफ बैठ गई, ये नहीं करना। और फिर इन रातों में क्या करना है? सदका जरूर करें, हर रात में सदका करें, चाहे थोड़ा ही करें, करें जरूर, ताकि वो अगर लैलतुल कदर है तो फिर 83 ईयर्स तक सदका करने की जो हमें अजर मिलना था उससे ज्यादा मिल जाए इस एक रात में। और सहरी का वक्त जब हो तो उस वक्त इस्तिग़फ़ार करें। सहरी के वक्त, जैसे मैंने आपको ये आयत बताई, सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार का मतलब, यानी सहरी का वक्त खास तौर पे इस्तिग़फ़ार के लिए, खास तौर पे। तो उस वक्त में इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है, और सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ जो दुआ है उसके अंदर बख्शिश की है, जो लैलतुल कद्र की दुआ आप सबको आती होगी, आप अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ अन्नी, ये दुआ मांगते जाइए। चाहे आप सहरी बना रहे हैं, चाहे आप खा रहे हैं, सहरी ज़रूर खाइए, क्योंकि सहरी खाने वालों के लिए अल्लाह ताला रहमतें उन पे नाजिल करता है, और उसके फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं जो सहरी खा रहा होता है। तो सहरी ज़रूर खाएं, अब उसके अंदर ज़रूरी नहीं आपने बहुत ही एहतमाम करना है, पानी भी पी लिया तो वो सहरी हो गई, लेकिन उस वक्त आपने इस्तिग़फ़ार ज़रूर करनी है। तो ये थोड़ा सा, थोड़ी थोड़ी बातें थीं इन रातों के लिए, जिस तरह से हम प्रोग्रेस करेंगे इन रातों के अंदर। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं इंशाअल्लाह ताला कल आपको बताऊंगी जो लैलतुल कद्र की दुआ है ख़ास, उसका माना और कितनी इम्पोर्टेंट ये दुआ है, और कैसे ये दुआ डिफरेंट है दूसरी दुआओं से। इस्तिग़फ़ार के लिए और भी दुआएं हैं, मगर इसमें क्या ख़ास बात है कि जो इसी के बारे में हमें कहा गया कि ये दुआ स्पेसिफिकली मांगी जाए। जहाँ तक लैलतुल कद्र की निशानी की बात है, तो ये ऐसी रात होगी जिसमें आंधी नहीं होगी, शोर शराबा नहीं होगा, पुरसकून रात होगी। आम रातों की निस्बत थोड़ी इसमें ठंडक होती है, ना सख्त गर्म ना सख्त सर्द, ऐसे खुली फिजा। और इस रात में क़याम की जो आपको लज़्ज़त आएगी वो बाकी रातों में नहीं आएगी। तो इसलिए जब आप क़याम करें, कोशिश करें पूरी यकसुई के साथ, ज़रूरी नहीं आपने तेज़ी के साथ 100 नफल पढ़ने हैं या 20 रकात पढ़नी है या 30 पढ़नी, ये नंबर को काउंट ना करें, ये देखें कि कितनी खुशू के साथ, कितनी दिल लगा के मैं पढ़ रही हूँ, कितने शौक के साथ मैं पढ़ रही हूँ। और जैसे कि हमें पूरा कुरान नहीं भी हिफ्ज है, कोई मसला नहीं है, कुरान करीम पकड़ के फिर भी हम पढ़ सकते हैं। जो औरतें हैज़ के साथ हैं वो फिर कुरान करीम की तिलावत सुन सकती हैं, और जैसे मैंने आपको कहा दुआ तो सभी कर सकते हैं, उसके लिए ना वुजू की ज़रूरत है ना उसके लिए कोई पाकी की ज़रूरत है, और दुआ इबादत है, तो आप ये वाली इबादत कर लीजिए, जिक्र कर लीजिए, उसमें तो कोई ममानियत नहीं है। तो कोई भी महरूम ना रहे, इस चीज को उजर ना बनाए कि अब मैं नमाज नहीं पढ़ सकती लिहाजा मैं सो जाऊं। क्या आपको इस रात की खैर नहीं चाहिए? तो अगर कोई रात आपको लगता है कि ये लैलतुल कदर नहीं है, तब भी उसमें इबादत कीजिए। क्यों? इसलिए कि ये रमजान के तमाम लम्हे बहुत कीमती है, हर रात और दिन में किया गया अमल कई गुना ज्यादा है। जैसे इब्ने जौजी ने फरमाया कि रमजान में की गई एक तस्बीह गैर रमजान में की गई 1,000 तस्बीहात से बेहतर है, 1,000 तस्बीहात से। तो लिहाजा कोई भी लम्हे में आप कोई नेकी कर रहे हैं, खास तौर पे अब जबकि ये हमसे जुदा होने वाला है महीना, तो इसको बहुत तवज्जो दीजिए, बहुत इसको कीमती जानिए, और कोई लम्हा ज़ाया ना कीजिए। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए।